एक बार फिर से प्यार से बोले ओम शांति। थोड़ा मुस्कुराते भी बोले एक बार ओम शांति। आप सभी इस भारत भूमि की भारत माताओं का अपने ही पिता के घर में और अपने ही घर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। श्रावण मास भी चल रहा है और पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है। श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास जो दोनों ही बहुत पावन मास है, जिस मास में तीर्थ करना, दान पुण्य करना ये बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप सभी को ये सुनाते हुए अति गर्व महसूस हो रहा है, हर्ष भी हो रहा है कि आप सभी आबू महान तीर्थ, आप जिस स्थान पर आए हैं, हिल स्टेशन के हिसाब से तो ये प्रसिद्ध है ही है, परंतु आबू तीर्थ सबसे महान तीर्थ है। ये परमात्मा की अवतरण भूमि है, ऋषि मुनियों की ये तपस्या की भूमि है, और इस भूमि पर आप सभी श्रावण मास में और पुरुषोत्तम मास में जो विशेष हमारा टॉपिक है, अम्ब्रेला थीम है, एम्पावरिंग द फैमिली, कैसे हम अपने परिवार को सशक्त करें। परिवार को सशक्त करने की जिम्मेवारी विशेष महिला की, नारी की होती है। कैसे हम पहले अपने आप को एम्पावर करें, क्योंकि जब तक हम स्वयं चार्ज नहीं होते, हम खुद एम्पावर नहीं होते। बल्ब जब खुद नहीं जलता तो वो रोशनी कैसे दे रहा। तो इस महान तीर्थ पर आप सभी को चार्जिंग के लिए कहें, आप सभी को परमात्मा की शक्तियों से भरपूर करने के लिए कहें, दिव्य गुणों का श्रृंगार करके सजाने के लिए कहें, उसके लिए विशेष आमंत्रित किया है। तो अब मैं अपने मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आमंत्रित करती हूँ हम सबके बीच में हमारे आदरणीय निर्मला दीदी जी, वो मंच पर पधारें और मंच की शोभा बढ़ाएं, और हम सभी तालियों से मंच की शोभा बढ़ाने वालों का स्वागत करते रहेंगे। हम सबके बीच में हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी, हमारी सम्माननीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, जिस ज्ञान सरोवर में, ज्ञान परिसर में आप रहे पड़े हैं, ये ज्ञान सरोवर की सेवाओं में हमारी निर्मला दीदी जी हम सबके बीच में मंच की शोभा बढ़ाने पहुंची। हम जोरदार तालियों से दीदी का स्वागत करते हैं। हम सबके बीच में हमारे राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी जी वह मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाए। आप हमारे महिला विंग की चेयरपर्सन है, ऐसा कहें कि दीदी के निमंत्रण से आप सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारी डॉक्टर सविता बहन जी आप भी मंच पर आए। हमारी ये त्रिमूर्ति दीदियाँ ये मंच पर आ गई हैं। परमात्मा भी जब कर्तव्य कराते हैं ना तो तीन को निमित्त बनाते हैं, तो ये मंच की शोभा भी हमारी त्रिमूर्ति दीदियों ने बढ़ाई है। और उसके बाद हमारे आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी विशेष आज के इस रिसेप्शन सेशन में जो हमारे विशेष अतिथि पधारे हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करती हूँ। सिरसा से पधारी हुई हमारी श्रीमती नीता पुरी, हम उनका भी स्वागत करते हैं। मंच पर आप आए जूनागढ़ से पधारी हुई हमारी श्रीमती बहन आरती जोशी, जूनागढ़ से पधारी हुई हमारी बहन आरती जोशी, जोरदार तालियों से हम मंच पर आसीन मेहमानों का स्वागत करेंगे। और उसके बाद पूना से पधारी हुई हमारी श्रीमती बहन सुनीता वाडेकर, हमारे मुख्य मेहमान जो आज के इस सेशन थे, वह तीनों ही मंच पर आ गए। हमारी मंच बहुत ही सुंदर शोभनी हो गई, जैसे मंदिर मूर्तियों से सज जाता है, आज हमारा मंच इन विशेष हमारे मेहमानों से और हमारी सम्माननीय दीदियों से सज गया है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम सभी 3 मिनट परमात्मा की पावन स्मृति में बैठेंगे। कोई भी कार्य जब शुरू किया जाता है तो परमात्मा की ब्लेसिंग सबसे पहले जरूरत होती है, और उनकी ब्लेसिंग तब मिलती है जब हम अपने मन की तार को उस परमात्मा से जोड़ते हैं। तो चलिए 3 मिनट अंतर जगत की यात्रा पर परमात्मा का दिल से शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने इस पुरुषोत्तम मास में, श्रावण मास में, हमारी इस भारत की माताओं को इस आबू महान तीर्थ पर पहुंचाया है। उनकी स्मृति में हम 3 मिनट बैठें।
ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान, ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
गुरुवाणी की रूपा है, मधुरवाणी की रूपा है। सभी ने परमात्म स्मृति में आज के इस महिला प्रभात की ओर से आयोजित सेमिनार का ऐसा कहें कि दीप जला दिया। हृदय रूपी मंदिर में परमात्म याद का दीप जलाना ही शुभ कार्य की शुरुआत होती है। अब मैं बहनों को आमंत्रित करती हूँ कि हमारे मंच पर आसीन हमारी आदरणीय दीदियाँ और हमारे विशेष अतिथि उन्हें गुलदस्ते के द्वारा और बैच लगाकर आप उनका स्वागत करें। हमारे इस भारत के अंदर जब भी कोई मेहमान आता है, तो मेहमान को हमेशा भगवान का रूप समझा जाता है और उस रूप से ही अतिथि को एक विशेष उस भावना से ही हमेशा रिसीव किया जाता है। तो आप सभी भी ईश्वर के घर में पधारे हैं। हमारी आदरणीय निर्मला दीदी जी का फूलों से स्वागत है, हमारी आदरणीय चक्रधारी दीदी जी का पुष्प पुष्पों से स्वागत हो रहा है, आप सभी की तरफ से ये स्वागत है। तो इसलिए आप सभी जोरदार तालियां बजाएंगे हमारी। हमारी विशेष नीतापुरी बहन आरती जोशी बहन, सुनीता बहन, और हमारी सविता बहन, हम तब तक स्नेह से तालियां बजाते रहे जब तक यह स्वागत की श्रृंखला जो है वो चालू है, क्योंकि तालियां बजाना ये खुशी की निशानी है। ये मंच पर बैठे हुओं का स्वागत नहीं, आप सभी का भी स्वागत है। तो आप सभी अपने स्वागत में भी जरूर जरूर ताली बजाएंगे। स्वागत के इस श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब आप सभी के सामने छोटी सी दो कन्याएं स्वागत नृत्य पेश करेंगी। आप सभी माताओं के शुभ आगमन में नृत्य पेश करना, क्योंकि देखा जावे तो माताएं भी वास्तव में एक बहुत बड़ी नृत्यकारी है। जैसे नृत्य के अंदर शब्दों के भाव को एक्सप्रेस किया जाता है, जो शब्द होते हैं वह शब्द हमें क्या भाव बताते हैं, शब्दों का भाव अर्थ जो है वह दर्शन होता है नृत्य के द्वारा। हमारी माताएं भी अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ, 10 का परिवार, 15 का परिवार, कहीं इससे भी बड़ा परिवार, उन परिवारों के बीच रहते भी हरेक के मन के भावों को समझकर अपने जीवन को बहुत ही इंजॉय करती है। तो आप सभी के लिए विशेष बम्बई उल्लासनगर से हमारी दो कन्याएं बेबी दिया और बेबी अभिजीत आप सभी के सामने सुंदर नृत्य लेकर आ रही है।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की तपस्वी भूमि में महिला विभाग की तरफ से आयोजित पारिवारिक सशक्तिकरण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
I'm a पुष्प प्रेम के लाए हैं हम, सेवा है आराधना। दीप जलाए श्रद्धा के हम, आरती है सद्भावना।
स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका।
स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका।
खिली है कलियां, सजे है द्वार। खिली है कलियां, सजे है द्वार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। आप आए धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका।
धन्यवाद इन बच्चियों का। दोनों बच्चियां दीदियों से आशीर्वाद लेंगी, आ जाए। हाँ। बहुत ही सुंदर नृत्य के द्वारा आप सभी का स्वागत किया, और हमारी आदरणीय दीदियां इन्हें गुलदस्ता दे रही है, आप सभी भी बच्चियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। हम सबके बीच में हमारे सम्मानीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी भी आ रहे हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप मंच पर आए और मंच को सुशोभित करें। आप सभी पधारे हैं तो उसकी इतनी खुशी है कि हम स्वागत की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ लेते हैं। जिस कड़ी को पूरा करने के लिए विशेष हमारा मधुर वाणी ग्रुप आप सभी का संगीत के द्वारा, गीत के द्वारा, बहुत ही सुंदर शब्दों के द्वारा वह आप सभी के सामने अपना एक सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे। यह मधुर वाणी ग्रुप जो विशेष हमारे मधुबन ज्ञान सरोवर, शांतिवन, पांडव भवन, कहीं भी पूरे कैंपस के अंदर जो भी ऐसे विशेष सेमिनार होते हैं और जो भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, चाहे यहाँ पर रिट्रीट या रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं, हमारा मधुर वाणी ग्रुप सभी को संगीत के द्वारा हमेशा स्वागत करते, तो आप सभी का भी स्वागत मधुर वाणी ग्रुप के द्वारा। हमारे बीच में मृत्युंजय भाई जी, बहनों को आमंत्रित करती हूँ कि बहनें उन्हें गुलदस्ता और बैच के द्वारा उनका स्वागत करें। और हम सभी तालियों से आपका स्वागत करते हैं।
ओम शांति। खुशियों की बहार है, प्यारा प्रभु परिवार है, सपनों से भी सुंदर ये अपनों का संसार है। आपका स्वागत बारंबार है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें।
संसार है, शिव शक्तियों का सत्कार है, स्वागत है सत्कार है, अभिनंदन सौ सौ बार है। स्वागत है राजयोग की राहों में, हे जगदम्बे आओ आओ, हे जगदम्बे आओ आओ, जगत रहा पुकार है, शिव का ये संसार है, शिव शक्तियों का सत्कार है, स्वागत है सत्कार है, अभिनंदन सौ सौ बार है, शिव का ये संसार है, शिव शक्तियों का सत्कार है, शिव का ये संसार है, शिव शक्तियों का सत्कार है, स्वागत है सत्कार है, अभिनंदन सौ सौ बार है, स्वागत है सत्कार है, अभिनंदन सौ सौ बार है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मधुरवाणी ग्रुप का सतीश भाई, नीतन भाई, बहुत ही सुंदर संगीत के द्वारा आज के इस सेमिनार में हमारे आए हुए मंच पर आसीन और सभा में उपस्थित हमारी माताओं का स्वागत हुआ। एक कहावत है, सुखी परिवार कुछ भी नहीं, जन्नत से पहले एक और जन्नत है। सुखी परिवार और कुछ नहीं, जन्नत से पहले एक जन्नत है, और ऐसी जन्नत, ऐसा स्वर्ग आप अपने परिवार को बना सको, और बनाना ही है, ये जिम्मेवारी का ताज यहाँ से आप सभी को पहन कर जाना है। जैसे मंदिर की शोभा एक मूर्ति से होती है, मंदिर सुंदर हो और मूर्ति भी साथ में बहुत सुंदर हो तो उसकी और शोभा बढ़ जाती है। मूर्ति सब आने वाले दर्शन करने वाले प्रेमियों का दर्द सुनती है, सभी आने वाले भगत जनों का वह सब चेहरे भी देखती है, सबकी बातें भी सुनती है, साथ साथ में सब कुछ सुनने के बाद वह हर्षित रहते मुस्कुराती भी है, और साथ में वह अपने वरदानी हस्तों से दर्शन करने वाले भगत जनों को दर्शन भी देती है, परंतु एक बात नहीं करती, वो ये है कि वो बोलती नहीं है, इसलिए उसे मूर्ति कहा जाता है। सुखी परिवार अर्थात जहां पर हमारी माताएं एक मंदिर के मूर्ति की तरह रोल प्ले करें, सब परिवारों की बातें सुने, समझे और उसके बाद सब कुछ सुनते सब कुछ देखते हुए चित्त से प्रसन्न रहते चेहरे से मुस्कुरावे दिल से दुआएं दे परंतु कुछ बोले नहीं, ऐसा इम्पावर करने के लिए ऐसी शक्तियां भरने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आदरणीय राजोगिनी ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी जी को, क्योंकि आपका स्वभाव भी आप अपने स्वभाव से सचमुच ही बहुत ही सरल करुणा से भरे हुए क्षमा भाव प्रेम भाव आप इनकी प्रतिमूर्ति हैं। तो जिनका प्रैक्टिकल जीवन ऐसे गुणों से सजा हुआ होता है उनके मुखारविंद से निकले हुए जो वचन होते हैं वह सामने वाले के लिए एक औषधि बन जाते हैं। हमारे चक्रधारी दीदी जी आप 1962 से अपने जीवन को संपूर्ण रीति से इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया हुआ है। आप इस महिला प्रभाग की चेयरपर्सन हैं। आपने देश विदेश के अंदर विशेष रशिया की जो भी सेवाएं हैं वह भी सब आपके निर्देशन में होती हैं। आप एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं जो भी विशेष माउंट आबू हेडक्वार्टर में या देश विदेश में जहीं भी कहीं सेमिनार्स होते हैं आप विशेष स्पीकर्स के रूप में कहीं या ऐसा कहीं कि आपके अंदर परमात्मा ने एक ऐसी शक्ति भरी है कि आपकी उपस्थिति सुनने वालों में आपकी दृष्टि के द्वारा हीलिंग पावर का काम करती है। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी सम्माननीय हमारी आदरणीय चक्रधारी दीदी जी जो अपने वचनों के द्वारा आज की महिला अपने आप को एम्पावर करे और वह एक गढ़ परिवार के अंदर मंदिर की मूर्ति बने ऐसे वचनों का हम लाभ लेंगे। आदरणीय दीदी जी
ओम शांति मंचासीन मेरी राजयोगिनी बहने तथा भ्राता व आज की मंच की शोभा अतिथिगण तथा मेरे सन्मुख उपस्थित आप सभी महान विभूतियां मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लगभग 40 कॉन्फ्रेंसेस इस कॉम्प्लेक्स में और शांतिवन में महिलाओं से संबंधित ज्वलंत समस्याओं को सम्मुख रखते हुए आयोजित की गई। कई रूपों से चाहे वो डायलॉग के रूप से की चाहे रिट्रीट के रूप से की चाहे वर्कशॉप के रूप से की या कॉन्फ्रेंसेस के रूप से की, आज आप सबको यहाँ उपस्थित देखकर बहुत खुशी हो रही है और मैं कहूँगी कि अपनों का अपनों के द्वारा अपने ही घर में बहुत बहुत स्वागत है स्वागत है स्वागत है। आप सभी गीत में सुन रहे थे कि गर्म हवाओं से निकलकर ठंडी हवाओं में आए। आज बड़ी तेज वर्षा हुई, काले काले बादल आए और कई बार ये मिस्ट कमरों में भी प्रवेश कर जाती हैं। तो मैं ऐसे ही कह रही थी, हे प्रकृति हमारी माताएं आ रही हैं, कहीं उनका पाँव ना फिसल जाए, तुम शांत रहना, ठंडी हवा जरूर देना लेकिन उनको कुशल इस कार्यक्रम को अटेंड करने ही देना। और मैं देख रही हूँ सचमुच प्रकृति आप सब के अधीन है और आप सब की कुशलता के लिए थमी हुई है जब तक उनकी मर्जी है। शेष आप सभी रास्ते की तकलीफ को सहन करते हुए भी, और हो सकता है आपको यहाँ उचित स्थान आपके अनुकूल ना भी मिला हो, आपको भोजन आपके अनुकूल ना भी मिला हो, लेकिन फिर भी अगर कोई कठिनाई हो तो अवश्य बता दीजिएगा। अपने घर में आए हो, अपनों के पास आए हो, संकोच नहीं करना। और आज का जो हमारा विषय है वो हम सब समझते हैं कि किस प्रकार आज परिवारों के सशक्तिकरण की आवश्यकता समझी गई, क्योंकि एक समय ऐसा था कि परिवारों में जो खुशहाली थी, जो आत्मीयता थी, जो एक दो के प्रति स्नेह और प्यार था, जो एक दो के प्रति कोऑपरेशन और संगठन था, आज देखने में आता है कि ये चीजें जीवन से कोसों दूर होती जा रही हैं। वो उस समय जैसा आज वो प्यार नहीं रहा। आज क्या चाहिए परिवारों में, क्योंकि देखने में आता है परिवार टूटते जा रहे हैं। बच्चे घर से बाहर रहना ज्यादा पसंद करते हैं बनिस्पत की घर में माता पिता के छत्र छाया में, हॉस्टल में रह के पढ़ना चाहते हैं, देश से विदेश चले जाते हैं, वापिस नहीं आना चाहते हैं। ये सब ऐसा क्यों होता जा रहा है? जहां तक देखने में आया कि आज परिवारों में सहनशीलता की कमी हो रही है, कोई किसी की बात को सहन नहीं कर सकता, हर एक फ्रीडम से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, क्षमा भावना समाप्ति हो रही है, करुणा कम से कम होती जा रही है, दया प्यार और विनम्रता बहुत थोड़ी मात्रा में रह गई है, सहयोग और सम्मान की भावना भी घटती जा रही है। अगर संक्षेप में कहूं तो हमारे जीवन से जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, वे कुछ कम होते जा रहे हैं, जिस कारण से घर का वो नक्शा जो सुखमय नक्शा था, स्नेह और प्यार का नक्शा था, आज वो चित्र थोड़ा छाया में आता जा रहा है। मैं ऐसा कहूंगी कि हम इस बात को जानने की कोशिश करें कि क्या हमारे घर परिवार या हमारा निज का जीवन उन्हें गुणों से संपन्न रहे घर परिवार की शोभाओं को बढ़ा सकता है, और इस शोभा के घटने का कारण क्या है। तो मैं ऐसे ही आज बैठी थी और बैठी सोच रही थी क्या कारण होगा जो घर परिवार वैसे नहीं रहे। ठीक है, मोटे रूप से तो हम कहेंगे वैल्यूज कम होते जा रहे हैं और विकृतियां और विकारों की भावनाएं, नफरत, घृणा, स्वार्थ, इस प्रकार की भावनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसका भी कारण क्या है। तो सूक्ष्म में अगर आप कारण जानना चाहें तो मैं अपने लगभग 60 वर्ष इस विद्यालय में मुझे सेवाओं पर रत होते हो गए हैं, और अनुभव के आधार से देखा गया कि ये शरीर नाशवान चोला है, और इस नश्वर चोले के मध्य निवास करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। क्योंकि शरीर जड़ है, प्रकृति तत्वों से बनी है, परंतु इसके अंदर जो एनर्जी है जो शक्ति है, जो पावर है, उसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम आत्मा कहते हैं। आत्मा की वास्तव में मूल स्थिति, जो उसकी स्वाभाविक स्थिति थी, बहुत शांत थी, बहुत पवित्र थी, प्रेम था, अनंत था, शक्ति थी, ज्ञान था। लेकिन धीरे धीरे ये शक्तियां परिस्थितियों के कारण कहो, समय के परिवर्तित होने के कारण कहो, हालात बदलते हुए होने के कारण कहो, मानव की जो मूल प्रवृत्ति थी, जो मूल नेचर थी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई, जिस कारण कमजोरियों ने, विकृतियों ने अपना स्थान लेना शुरू कर दिया, जिससे मनुष्य का जो गृहस्थ का जीवन था, जिस गृहस्थ को आश्रम के पुकारा जाता था, वो गृहस्थ गृहस्थी रह गया, आश्रम गृहस्थ से अलग बनने लग गए। लेकिन कैसे पुनः गृहस्थ को आश्रम बनाया जाए और कैसे वो गृहस्थ का जीवन फिर से सुख में और आनंद में बन सके, उस पर इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के इस शिक्षाओं के अनुभव के आधार से मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जब आत्मा, जो एक एनर्जी है, जब उसकी एनर्जी लो होनी शुरू होती है, तो हायर एनर्जी के साथ एनर्जी को कनेक्ट किया जाता है। परमात्मा सुप्रीम एनर्जी है, आत्मा एनर्जी है, और जब आत्मा का परमात्मा से उन्हें कनेक्शन जुड़ता है, तो जो आत्मा की शक्तियां क्षीण होती जा रही थी, मर्च होती जा रही थी, वो धीरे 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 इमर्ज होनी शुरू हो जाती है। बिना स्पिरिचुअलिटी के और बिना योगाभ्यास के कोई ये समझे कि हमारा जीवन दिव्य बन जाए, शांत और सुखी हो जाए और परिवार पुनः वैसे ही परिवार बन जाए, ये इच्छा रखना व्यर्थ रहेगा। जब तक योगाभ्यास नहीं होगा, उस परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन नहीं जुटेगा। आज मैं आपको बताते हुए हर्ष अनुभव करती हूँ कि हम बहनें भी सेवा केंद्रों पर रहती हैं, जहाँ एक नहीं दस दस इकट्ठे रहते, कई रिट्रीट सेंटर्स हमारे हैं जहाँ 150, 150, 200 तक भी इकट्ठे ही रहते, लेकिन कभी तू तू मैं नहीं करते। हाँ, मैं ऐसा कहूंगी कि अगर किसी ने उस सुप्रीम एनर्जी के साथ अपना कनेक्शन कम रखा है, तो उसके अंदर वो पावर कम आने के कारण विकृतियां संपूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुई और दिव्यता का इमर्ज होने का कार्य पूरा नहीं हुआ, तो कभी उनका बोल ऊंचा या स्वभाव देहाभिमान के वशीभूत जागृत हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत प्यार और प्रेम का जीवन जीते। आज आप देखिए, यहाँ सबके लिए भोजन बनाने वाले भोजन बना रहे हैं, कपड़ा धोने वाले कपड़े धो रहे हैं, सफाई करने वाले सफाई कर रहे हैं, सब्जी लाने वाले सब्जी ला रहे हैं, काटने वाले काट रहे हैं, कोई किसी को ऑर्डर नहीं करता है। लेकिन सबके अंदर वो जो आत्मिक क्षमता है, जो शक्ति है, जो ईश्वर के द्वारा उन्हें बल प्राप्त हुआ है, वो ईश्वरी सेवा समझ करके हर एक हर प्रकार का कर्तव्य स्वयं करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहता है। तो मैं ऐसा कहूंगी कि अगर आज हम पुनः अपने घर परिवार को श्रेष्ठ बनाना चाहते, इस घर परिवार में सहन शक्ति, धैर्यता की शक्ति, समाने की शक्ति, या जीवन में अनेक श्रेष्ठताओं को लाकर कनिष्ठताओं को समाप्त करने का गुण चाहते हो, तो उसके लिए राजयोग, जो यहाँ विशेष सिखाया जाता है, जो प्रातः का क्लास खास राजयोग की क्लास रखा गया है, और उसके पश्चात ज्ञान की चर्चा और लेन देन चलती है। ये बहुत जरूरी है। इससे हमें उन्हें वो शक्ति जागृत होगी, वो शक्ति इमर्ज होने प्रारंभ होगी, जिस शक्ति की कमी के कारण आज घर परिवार वैसे नहीं रहे जैसे हमारे परिवार थे। और आज ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय कोई ऐसा बोल देते हैं, अगर ब्रह्मा कुमारी के पास जाओगे ना तो आपका घर छूट जाएगा। मैं समझती हूँ ये गलत मान्यताएं सुनते सुनते मनुष्य सत्यता से कोसों दूर होते जा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मान्यता है कि अपने घर परिवार को स्वर्ग बनाइए, उसे सुखमय बनाइए, उसे आश्रम समान बनाइए, उसके लिए स्वयं सशक्त हो जाइए और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी सशक्त कीजिए, आपका घर परिवार आपका सुखद परिवार बनेगा और आपका घर रहने योग्य होगा। आज कोई घर में नहीं रहना चाहता, कारण क्या हो चुका है? आज मनुष्य ये समझता है कि घर एक बंधन है, लेकिन ऐसी स्थिति श्रेष्ठ बन जाएगी तो आपको घर बंधन नहीं लगेगा, घर सुख में लगेगा। आज हम अपने आने वाली माताओं बहनों से पूछते हैं, लाखों परिवार इस ज्ञान में चलते हैं, कभी चलो पहाड़ों पर ठंडी हवा लेकर आओ, चलिए सागर के किनारे चलो, नदी के किनारे चलो, कभी क्लब चलो, कभी होटल चलो, कभी पिक्चर चलो, ऐसे विचार उनको नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उन्हें अपने घर में जो सुख मिलता है, गायन तो है, ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट, गायन है जो सुख छज्जू के चुबारे, ना बुलक ना बुखारे। लेकिन आज घर का नक्शा बदल गया, इसलिए ईश्वरी विश्वविद्यालय सबको यही संदेश देता है कि अपनी सुषुप्त शक्तियों को उन्हें जागृत कीजिए और अपने घर परिवार को फिर से सुखद और शांत स्थल बनाकर रहने योग्य परिवार बना लीजिए। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय दीदी जी, आपने बहुत ही सुंदर और सरल नुस्खे बताए कि हम कैसे अपने परिवार के अंदर एक सुख शांति का माहौल बनाएं, क्योंकि मिट्टी का मटका बनाने वाला और परिवार बनाने वाला ही उसकी कीमत जानता है, तोड़ने वाला नहीं। तो महिला परिवार बनाती है, जैसे कोई वस्तु बनानी हो तो उसके लिए आपको कोई मिठाई बनानी हो तो उसकी सामग्री जमा करनी है ना, तो दीदी जी ने आज सामग्री बताई कि ये सद्गुण ये ईश्वरीय शक्तियां कैसे हमारे घर परिवार के अंदर एक सुख शांति का माहौल ला सकती है। हम पूरा ही उम्मीद और विश्वास रखते हैं कि दीदी जी के द्वारा बताए हुए इन नुस्खों से आप जरूर जरूर अपने परिवार को जन्नत और जन्नत से भी एक पहले का जन्नत जरूर बनाएंगे। हम दीदी जी का फिर से ताली बजाकर धन्यवाद करते हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आदरणीय बहन आरती जोशी, आप गुजरात जूनागढ़ से आए हैं, आप बाल आयोग के डायरेक्टर हैं और जूनागढ़ में ही पहले आप एक्स मेयर के पद पर आसीन रहे हैं, वर्तमान समय आप स्टेट में बीजेपी के विशेष मेंबर हैं और आप बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं में प्रेसिडेंट के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपनी शुभकामनाओं का उपहार लेकर आप इस महिला प्रभात की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपके चंद शब्दों के द्वारा आप आज के इस सम्मेलन में अपनी शुभकामनाएं दें। आदरणीय बहन आरती जोशी।
पारिवारिक सशक्तिकरण राष्ट्रीय महिला सम्मेलन जो आज इस पवित्र भूमि पर मुझे आने का मौका मिला, सौभाग्य मिला, जो यहाँ डायस पर विराजमान तीन महान शक्तियाँ, हमारी सभी बीके परिवार की बहनों और भाइयों और बच्चे, महिला सशक्तिकरण का जो प्रोग्राम है, फंक्शन है, इस शब्द से मैं बोल सकती हूँ तो नारी तू नारायणी नारी नर निपजा, नारी ना कोखे जन्मे प्रहलाद ध्रुव जेवा बाढ़, अने ए नारी शक्ति छे। नारी ना त्रण स्वरूप आपवामां आव्या छे, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, समझ सकते हैं या हिंदी में बोलूं? गुजराती में समझ सकते हैं ना? अच्छा अच्छा, और सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और दुर्गा जी। सरस्वती का रूप ऐसे दिया गया है कि महिला एजुकेशन में अव्वल आए, आकाश से जमीन तक सफर कर सके, और दुर्गा का ऐसा रूप दिया है कि हमारे सामने कोई भी आंख खुली रख कर देखे, कोई हिसाब से देखे तो हम फाड़ के तीर भी कर सकते हैं उसको। और लक्ष्मी जी का जो रूप है, लक्ष्मी जी हमारे परिवार में, समाज में, उस हिसाब से हमारा जीवन निर्वाह चल रहा है। मैं यहां आज आई हूं, मेरी रियल स्टोरी दो बात कहूंगी। दीदी, 24 घंटे पहले जूनागढ़ से जो हमारा यहां ना प्रोग्राम बना था, हमारा यहां से नाम आया था, यहां से दमयंती दीदी, बीना दीदी और जूनागढ़ सेंटर की सभी बहनों को हमको यहां आने का आमंत्रण मिला, उससे हमारी खुशी बढ़ गई। मेरे साथी सदस्य भी मेरे साथ आए हैं, जो प्रज्ञा जी है, प्रवीणा जी है, कीर्ति जी है। लेकिन जीवन में विघ्न कहां से आता है, कहां से रास्ता निकलता है। बाबा के दरबार में 24 घंटा इस हिसाब से, इससे पहले मेरे पोती को एकदम बुखार आ गया, डॉक्टर ने मना कर दिया, एडमिट की बच्ची को। हमारी फ्रेंड्स और सेंटर से दीदी का फोन आया, मैंने बोला कि दीदी हम नहीं जा सकेंगे। मेरे फ्रेंड से और दीदी ने बोला सब बाबा पर छोड़ दो। मैंने बाबा को बोला कि बाबा मुझे इतना अवसर मिल रहा है, मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। मेरे बाबा पर इसलिए छोड़ दिया कि बाबा आप जो सोचोगे मेरे लिए, जो करोगे संकल्प, मैं वही करूंगी। मेरा बड़ा परिवार है, हमारे परिवार में हम 7 भाई हैं, 7 बहू हैं, 14 बच्चे हैं, 3 बहू है, उसके 6 बच्चे हैं, 35 मेंबर का हमारा बड़ा परिवार है। इस समय में बड़ा परिवार होना ये भी एक खुशी की बात है। अभी जॉइंट फैमिली की व्याख्या बोलते हैं ना, हम हमारे समय में इस व्याख्या को भी हम भूल जाएंगे। जो महिला की बात आती है तो महिला ऐसी शक्ति है जो नारी सशक्तिकरण के हिसाब से, जो इच्छा कर सकती है वही कर सकती है। हमारे घर में जो हम जो विचार आता है, जो काम करते हैं, हमारे हिसाब से ही होता है। और मेरी एक बात कहूं आपसे, तो कोरोना काल दरमियान 25/7/2020 का मेरा पति का देहांत हुआ, मैं बहुत अपसेट हो गई थी। हर रोज डॉक्टर ने मुझे नींद की गोलियां देनी पड़ती थी, रात में 2 बजे 3 बजे में बैठी रहती थी। इसमें 6 जनवरी जूनागढ़ की पावन भूमि पर शिवानी दीदी का चरण कमल पड़ा। मैं इस प्रोग्राम में गई, शिवानी दीदी से मुझे दृष्टि मिली। उस दृष्टि के हिसाब से आज मैं 10:30 बजे सो जाती हूं, नींद की गोली मुझे लेनी नहीं पड़ती है। और हमारे परिवार में जो सभी अभी दीदी ने बोला, सभी जगह में मुझे पूर्व लग गया, पूर्व मेयर, पूर्व प्रमुख, पूर्व आयोग चेयरमैन, सब कुछ में पूर्व लग गया। पर 6 जनवरी से मेरे सामने से पूर्व निकल गया और बाबा के सानिध्य में मैं आ गई। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, शिव बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। मेरे घर के आंगन में ही सेंटर है। हम बोलते हैं ना कि गंगा पास हो तो डुबकी मारनी पड़ेगी, इस तरह मेरे के घर के पास ही सेंटर है। 9 बजे तक मैं उठती नहीं हूं, लेकिन शिवानी दीदी की मुझे दृष्टि मिली, मैं 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करती हूं, 6:30 बजे मैं सेंटर जाती हूं। और जूनागढ़ के सेंटर ने मुझे नई राह दिखाई, उस राह में आज मुझे जीना भी सिखाया। तो इस स्त्री सशक्तिकरण में जो नारी शक्ति है, वो हमारे घर में भी हम होम मिनिस्टर है या नहीं? हमारे हिसाब से सब करवाते हैं, लास्ट तक हम ना ही बोलते कि जो आप करो ही अच्छा है, जो आप करो ही अच्छा है, लेकिन हमारे हिसाब से ही होता है घर में सब कुछ, सही है ना? और जो मैं राज की एक बात बोल सकती हूँ, हमारे देश में हमारे वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी है, श्री सशक्तिकरण के हिसाब से मैंने एक काम शुरू करवाया। मेरे पास अभी 1200 बहनों काम कर रही है, 1200 बहनों घर पे बैठकर कमा रही है। मैं ऐसे अभी बोल रही हूं कि स्त्री क्या नहीं करवा सकती है। तो इस हिसाब से जो मुझे यहां बोलने का मौका मिला, आपको सहन करने का मौका मिला और मुझे आपका दर्शन करने का मौका मिला, मैं घड़ी धन भाग्य बाबा के दरबार में बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं कि मुझे ये मौका मिला। एक मेरी जो कविता की एक लीटी बोलकर पूरा करूंगी मेरा वक्तव्य। ए मत कहो खुदा से, ए मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ए मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरे बाबा बड़े हैं, मेरे बाबा बड़े हैं। ओम शांति, धन्यवाद, थैंक यू।
बहुत बहुत आभार हमारी आदरणीय बहन आरती जोशी जी का, जो आप परमात्मा पर भरोसा रखकर और आपने सुंदर अवसर का लाभ लिया, और हम सभी की भी दुआएं प्रार्थना है कि आपकी पोत्री का स्वास्थ्य बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। महिला का सबसे पहला कर्तव्य है अपने परिवार का स्तंभ बने। स्तंभ होता है जब हलचल में आते हैं, हिलते हैं सपोर्ट के लिए। स्तंभ को टावर भी कह सकते हैं। टावर होता है जो दूर दूर तक लाइट देता है। हमारी बहनें, हमारी माताएं अपने परिवार के लिए स्तंभ भी हैं, तो साथ में लाइट हाउस भी है। आप कैसे स्तंभ बने, टावर बन कैसे अपने परिवार को अपना सपोर्ट दें, अपना प्रकाश दें, यह गहरी पहली सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय भ्राता मृत्युंजय बाई जी को। मृत्युंजय बाई जी, वैसे नाम से सभी मृत्युंजय मंत्र याद करेंगे, है ना? तो वह आज आपको मंत्र ही देंगे, जिस मंत्र से आप अपने परिवार के स्तंभ बने। आप पिछले 50 वर्षों से इस इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में समर्पित रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप ब्रह्मा कुमारी से एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं और राजोरा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की जो एजुकेशन विंग है, आप उसके वाइस चेयरपर्सन हैं। जो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के सेमिनार्स होते हैं, उन सम्मेलनों को आयोजन करने में आप कार्यकारी सचिव रहे हैं। तो मैं आदरणीय मृत्युंजय बाई जी को इनवाइट करती हूँ कि वह आपको ऐसा मंत्र दे जिस मंत्र से हमारी माताएं अपने परिवार का स्तंभ और परिवार को प्रकाश देने वाला टावर बन जाए। आदरणीय मृत्युंजय बाई जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता श्री बाबा और साकार माध्यम पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को नमन करते हुए, उसको आवाहन करते हुए, इस मंचासीन हम सबका प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, इस संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका है और हमारा दीदी चक्रधारी दीदी है, सारी दुनिया को चक्कर लगा के आत्माओं को उन्नति की तरफ, महिला को एम्पावरमेंट करते हुए इस समय में हम सबको एम्पावरमेंट कर रहे हैं, उसको भी नमन करते हुए, हमारा सविता बहन, डॉक्टर सविता बहन है, पुष्पा बहन है और इस सभा में अतिथि के रूप में उपस्थित नीतिपुरी बहन है, आरती जोशी बहन है, अन्य सभी बहनों को, आप सभी समा में उपस्थित सभी बहनों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं सबसे पहले महिला प्रभाग की विंग की सभी सदस्यों को, इंक्लूडिंग चक्रधारी बहन डॉक्टर सविता बहन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि एक महिला सशक्तिकरण के सम्मेलन को ज्ञान सरोवर परिसर में आयोजित करके आप लोगों को बुला करके यह एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल को प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई। हम सभी सदियों से पढ़ते आए, सुनते आए, देखते आए, एन एम्पावरमेंट ए बॉय इज एन एम्पावरमेंट एन इंडिविजुअल, एन एम्पावरमेंट ए गर्ल इज एन एम्पावरमेंट ऑफ ए फैमिली। मैं इसको थोड़ा पढ़कर आगे बढ़कर के कहना चाहता हूँ, एन एम्पावरमेंट ऑफ ए वुमेन विथ स्पिरिचुअल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन इज एन एम्पावरमेंट टू ए सोसाइटी, एन एम्पावरमेंट टू ए वर्ल्ड, मैं मानता हूँ। क्यों? आप सभी इस समय में देख रहे हो, सारी दुनिया में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्व लगभग 147 कंट्रीज में, जिस स्थापना के समय में केवल 350 बहने थे, बाबा उन समय एक एक छोटे छोटे कुमारियां थे, हमारा चक्रधार बहन इंक्लूडिंग, उससे पूर्व में दादी जानकी जी हो, गुलजार दादी हो, रतनमणि दादी हो, प्रकाशमणि दादी हो, मम्मा भी इंक्लूडिंग मातेश्वरी जगदम्बा शरत, इन सभी छोटे छोटे थे उस टाइम में। बाबा कहते बच्चे आप सभी विश्व कल्याणकारी, उनको भारत का ही नक्शा मालूम नहीं था, विश्व का ही नक्शा मालूम नहीं था, परंतु इन्होंने देश विदेशों में ट्रैवल करके केवल एक घर का नहीं, एक मोहल्ले का नहीं, एक देश का नहीं, सारे विश्व में ईश्वरी विश्वविद्यालय का विकसित करके एक आध्यात्मिक शिक्षा, एक नैतिक शिक्षा, एक चारित्रिक शिक्षा को दे करके आज इस ईश्वरी विश्वविद्यालय को इस कड़ी में खड़ा किया है इन्होंने। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी सेवा भाव, उनकी सोच, इस परिश्रम से पराक्रम, ये दोनों दर्शा करके उन्होंने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय विश्व कल्याण के लिए, भारत को दैव भूमि बनाने के लिए, भारत को स्वर्ग भूमि बनाने के लिए, भारत को भयमुक्त, नशामुक्त, दुख, दारिद्र, इन सबसे मुक्त करने के लिए एक नया दिशा, नया चारित्रिक आंदोलन कर रहे हैं। बहुत आंदोलन हुए हैं, परंतु ये आंदोलन एक सामान्य आंदोलन नहीं है, परमात्मा का ज्ञान के माध्यम द्वारा एक नया आंदोलन है, जिस आंदोलन के बाद में दूसरा आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं। ऐसे एक भारत का जागृत होना अर्थात विश्व को जागृत करना, भारत खड़ा होना अर्थात विश्व गुरु बनना, भारत खड़ा होना माना इस मदियों को आदि नहीं है, भारत की माताओं को खड़ा होना, भारत की माताओं को सशक्ति करना, भारत की कन्याओं का सशक्ति करना। यदि इस कार्य को हम सफल करते तो ऑटोमेटिकली उनके माध्यम द्वारा नया विश्व गुरु भारत बन ही जाएंगे, क्योंकि भारत माता विश्व गुरु बने। इसके एग्जाम्पल अभी अभी बहन जी ने कहा, हमारा शिवानी बहन, एक शिवानी बहन जितना भी इस ईश्वरीय शिक्षा को देखते हुए सारी दुनिया को, बहनों हो, भाई हो, बुद्धे हो, जवान हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रीट हो, उन सबके अंदर एक नया ऊर्जा, नया प्रेरणा, नया शक्ति, नया सोच का इन्होंने दिया। क्यों? इन्होंने इस आध्यात्मिक शिक्षा का अपने जीवन में समावेश किया, उसका परिणाम स्वरूप उन्होंने सदा एक, अभी अभी हमारे बहन जी का टावर ऑफ लाइट, टावर ऑफ माइट, टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ विजडम कहते हैं। साथ साथ में टावर तो खड़ा रहता है, परंतु जैसे मूविंग टावर है, मूविंग टावर है, ऐसे देश विदेशों में चक्कर लगाते हुए, लोगों को प्रेरणा देते हुए आज खुद भी एक मास्टर सरस्वती के रूप में चल रहे हैं। ऐसी एक एक आत्मा आप सभी मास्टर सरस्वती बने, मास्टर लक्ष्मी बने, मास्टर क्षमा शक्ति बने, मास्टर दुर्गा बने, तब तो ये दुर्गुणों की दुनिया, अशांति की दुनिया, पाप की दुनिया, अपवित्रता की दुनिया समाप्त होकर के एक देव भूमि बनेगा। ऐसे भूमि बनने के लिए मातृशक्ति की बहुत आवश्यकता है, उनके अंदर ज्ञान की शक्ति की आवश्यकता है, त्रिकाल ज्ञान की आवश्यकता है, आत्मा का त्रिनेत्र खोलने की आवश्यकता है और सद्भावना की आवश्यकता है, तब तो वसुदैव कुटुंबम का जागृत होगा। ऐसे वसुदैव कुटुंब बनाने की यदि ताकत है तो, शक्ति है तो किधर है? भारत की माताओं के अंदर है, भारत की। इसके लिए बाबा ने एक शुरू में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासक का कौन बनेगा, भविष्य में भी कौन बनेगा, बाबा ने पहले मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को बनाया, उसके बाद में डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ दिस फैमिली, हेड ऑफ दिस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, उसको माताओं को ही रखा। यदि उनके नेतृत्व में इतने विशाल, इतने वटवृक्ष के रूप में विकसित हो सकता है तो घर में क्यों नहीं हो सकते, देश में क्यों नहीं हो सकते, समाज में क्यों नहीं हो सकते, ये हो सकता है। इससे भी बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है इस दुनिया में? ऐसी दुनिया को परिवर्तन करने की ताकत यदि आई तो बहनों में है, मैं ऐसी बहनों को, ऐसी माताओं को, ऐसी कन्याओं को, ऐसी स्त्री शक्ति को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, ओम शांति कहता हूँ, ओम शांति।
बहुत बहुत आभार हमारे आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी, आपने बहुत ही सुंदर उपाधियां देकर हमारी भारत की माताओं को नवाजा कि आप ही लक्ष्मी का रूप हो, आप ही सरस्वती का रूप हो। भारत में जन्म लेने वाली माताएं माता गुरु बन जाए तो हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बन जाए। ये बहुत ही सुंदर शब्दों के द्वारा आपने इन्हें स्तंभ बनाना और टावर बनाना अपने वचनों से आपने प्रेरणाएं दी, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आदरणीय बहन नीता पुरी, जो सिरसा से पधारे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, टेट सेवी संस्था से जुड़े हुए हैं। आपने बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं में अपनी सेवाएं दिया है और विशेष आप संस्थाओं में पदासीन भी रहे हैं। 23 सालों से आप विशेष एक सक्रिय सदस्य के रूप में IWC में शामिल हुए हैं। आपने हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन और BA2 डिग्री प्राप्त किया है। आप जैसे सनातन धर्म मंदिर, महात्मा बुश योग संस्थान, NGOT संस्था, इन सब संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं। आपको बहुत सारे पुरस्कार और उपाधियों से नवाजा गया है, जैसे कि मोस्ट सपोर्टिव, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, फेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट 309। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय बहन नीता पुरी जी, शुभकामनाएं देना।
पवित्र आत्मा देवी गुणों से ओतप्रोत आदरणीय राजयोगिनी BK डॉक्टर निर्मला तिथि जी, अनुभवात्मक प्रेरणादायक आदरणीय राजयोगिनी BK चक्राधारी दीदी जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी विशेष महानुभव हस्तियां, समस्त विराजमान आदरणीय बहन बहनों और भाइयों, सभी को मेरा विनम्रता पूर्वक प्रणाम। दिव्य आत्माओं की उपस्थिति ने प्रेम, शांति और खुशी का प्रसाद वितरित किया, मन गदगद हो गया। फीलिंग ब्लेस्ड एज गेटिंग डिवाइन एनर्जी हेयर एंड देयर एवरीवेयर। साथियों, आज हम सब देव भूमि पर उपस्थित हैं। BK परिवार का हिस्सा बनना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। हम 21वीं सदी की विकास की दौड़ रहे हैं। निसंदेह रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं। जीवन अनेक तनाव, उलझनों और चिंताओं के युक्त होने के कारण माँ बाप बच्चों को उचित समय नहीं दे पा रहे, जिस कारण बच्चे अपना मूल्यवान समय अपने दोस्तों, सोशल मीडिया, टेलीविजन, मोबाइल पर व्यतीत कर रहे हैं। वे गलत आदतें सीख रहे हैं। जरूरत है परिवार को सशक्त करने की, जरूरत है। हम भली प्रकार परिचित हैं कि हम अपने अपने परिवार का अभिन्न अंग हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार छोटा है या बड़ा है, अमीर है या गरीब है, आप किस जाति से हो, आप किस वर्ग से हो, आपका परिवार आपका अपना परिवार है। आपके परिवार के रीति रिवाज, संस्कृति आपकी धरोहर है। आपका व्यक्तित्व आपके परिवार के संस्कारों का प्रतिबिंब है। परिवार बच्चों के लिए पहला स्कूल होता है, हम सब जानते हैं, जहाँ पे विभिन्न संस्कारों की तालीम, शिष्टाचार के गुण मिलते हैं। परिवार एक एहसास है जो हमें जिंदगी का मकसद सिखाता है, गहरी दोस्ती है, मधुर संगीत है जो हमें आनंदित करती है, दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी महसूस करने का परम आनंद है। इम्पावरिंग मीन्स कार्य विशेष के लिए किसी को अधिकार देना या अधिकृत करना, ऑथराइज्ड करना। सशक्तिकरण का अभिप्राय है लोगों के पास अपने जीवन पर शक्ति और नियंत्रण होना। इम्पावरिंग द फैमिली मीन्स पारस्परिक संबंध बनाने के लिए परिवार के सदस्यों को प्रेरित करना, जिससे परिवार सशक्त बन सके। इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन पीपल आर इक्वल सिटीजन, सम ऑफ दोज आर रिस्पेक्टेड एंड कॉन्फिडेंट इन देयर कम्युनिटीज आर कॉल्ड एम्पावर्ड पीपल। सशक्त परिवार के सदस्य साथ साथ अधिक गुणवत्तापूर्वक समय बिताते हैं। बेटर कम्युनिकेशन करना, अर्थात आपस में हेल्दी कन्वर्सेशन करना, विकसित होने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। टू ग्रो, टू लर्न हाउ टू रिजर्व कॉन्फ्लिक्ट्स, टू मूव टुवर्ड्स बीइंग हेल्थियर एंड हैप्पियर। माता पिता परिवार के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। परिवार तब तक सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता जब तक माता पिता सशक्त नहीं होते। माता पिता के सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा और अन्य को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि माता पिता को अपने बच्चों की डिसेबिलिटीज एंड नीड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। माता पिता परिवार को सशक्तिकरण के पथ पर तभी लेकर जा सकते हैं जब वे अपने बच्चों की घर की गतिविधियों के बारे में पूर्ण रूप से जागरूक करवाएं, समय समय पर बच्चों के साथ खुली बातचीत करें, खासकर उन विषयों के बारे में जिन पर सोसाइटी में ओपन डिस्कशन कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, सेक्स, रेप, ऐसे टॉपिक्स पे माता पिता को खुल के अपने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। लड़कियों पर ही समाज की पाबंदियों का जिक्र ना किया जाए, बल्कि लड़कों को भी समझाया जाए हाउ टू बिहेव प्रॉपरली विद गर्ल्स। बच्चों के अंदर ये जज्बा पनपने की जरूरत है कि माता पिता बच्चों के प्रति जो इच्छाएं हैं वो उनका सम्मान करें। रिस्पेक्टिंग द विशेस ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, साइन ऑफ एम्पावर्ड फैमिली। पेरेंट्स डिफाइन फैमिली एम्पावरमेंट एज फैमिली प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ देयर ओन स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज रिगार्डिंग देयर चाइल्ड्स केयर एंड डिवेलपमेंट। अब प्रश्न ये उठता है कि माता पिता बच्चों को सशक्त कैसे बनाएं? उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर वन, बच्चों को उनकी चुनौतियां समझने में मदद करें। सब्जेक्ट क्या लेना है, कॉलेज कौन सा लेना है, बच्चों को ये स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना कि जब उन्हें सहायता की आवश्यकता है तो पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर एज बिग सपोर्ट सिस्टम। उन्हें अधिक आत्मविश्वासी बनाए बाय ट्रस्टिंग देम। बच्चों के निजमों का सम्मान करें। आप में और बच्चों में एक जनरेशन गैप होता है, तो बच्चों को भी सोचना समझना हमारी जिम्मेवारी बनती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उचित मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बच्चों के पास अभी कम एक्सपीरियंस है। लक्ष्य प्राप्ति के दौरान आने वाली कठिनाइयों का अवगत करवाएं। परिवारों को एम्पावर करने के लिए इजी से तरीके हैं। स्ट्रेंथनिंग परिवार दृष्टिकोण की नींव होती है। माता पिता का लचीलापन, नो रिजिडनेस, सामाजिक स्पन, रिलेटिव घर में आए हैं तो बच्चों को सिखाएं थोड़ी देर मोबाइल छोड़ दें, वो उनसे बातचीत करें, उनके साथ घूम फिर के आए और बात करें। जरूरत के समय ठोस समर्थन दें उनको। पालन पोषण अच्छी तरह से, लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाएं। आजकल बच्चे भूल रहे हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्थी एंड वाइज। बाल विकास का ज्ञान दें। बच्चों को सामाजिक और भावात्मक क्षमता बताएं। साधारण भाषा में, वे सभी लोग समान नागरिक हैं जो अपने समुदायों में सम्मानित और कॉन्फिडेंट हैं, वही लोग सशक्त कहलाएंगे। सशक्तिकरण का अभिप्राय है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन पॉजिटिव मैनर, प्रोवाइडिंग सजेशंस टू रिड्यूस inefficiencies and encouraging new initiatives to be taken forward. परिवार वगैरह दोस्ती होती है जो कभी टूटती नहीं. दुनिया के लिए तो आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हैं. किसी भी इंसान का व्यवहार उसके परिवार की देन है. फैमिली एम्पावरिंग में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. घर की गतिविधियों के बारे में पूछताछ करना, खुली बातचीत, अपने बच्चों के प्रति माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करने से हम एक मजबूत सशक्त फैमिली सिस्टम बनाते हैं जो कि परिवार के सशक्तिकरण का आधार बनता है. सेकंड, स्पिरिचुअलिटी एंड द प्रैक्टिस ऑफ राज योगा टुवर्ड्स द लाइफ डिवेलप्स द राइट एटीट्यूड एंड फॉस्टर हार्मनी रिस्पेक्ट एंड ब्रिंग्स फेथ एंड एम्पावर्स फैमिली. अंत में मैं ये जरूर कहूंगी, जब हम इस बात की अनुभूति कर लेते हैं कि मैं शिव शक्ति आत्मा शिव शक्ति हूँ, अर्थात परिवार की आधारशिला बनकर परिवार को सशक्त बनाने में कामयाब होते हैं. इस बात की रियलाइजेशन मुझे सिरसा में ब्रह्म कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच के फोकल पॉइंट पर्सन बीके डॉक्टर सुनीता दीदी के द्वारा हमारी इनरविल बहनों के लिए शांति स्वरूप पर अनुभव का सेशन हुआ था. उसके द्वारा मुझे हुई थी ये यूनिक क्रिएटिव सेल्फ रियलाइजेशन करवाने वाला प्रोजेक्ट से अनुभव द्वारा ये सीखा कि परिवार को एम्पावर्ड करने के लिए खुद को एम्पावर करना कितना जरूरी है. शिव शक्ति लीडरशिप प्रोजेक्ट के दौरान आपके बारे में डॉक्टर निर्मला दीदी जी पता चला और आपका आशीर्वाद एक वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुआ था. आज मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आपका साक्षात दर्शन हुआ जिससे आपकी दिव्य ऊर्जा मुझे साक्षात मिल रही है. आपका दिल से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर निर्मला दीदी जी. तो भाई और बहनों, लेट अस एम्पावर अवर फैमिली बाय सेल्फ रियलाइजिंग अवर सोल एज शिव शक्ति. सशक्त परिवार, सुनहरा परिवार, उज्जवल भारत, स्वर्ग हमारा, स्वर्ग हमारा, स्वर्ग हमारा. ओम शांति. धन्यवाद.
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय बहन नीता पुरी जी. संसार के लिए आप सामान्य व्यक्ति हैं, पर परिवार के लिए आप संसार हैं. ऐसे सुंदर शब्दों से आपने आज के सम्मेलन में अपनी शुभकामनाएं दी. परिवार में महिला का स्थान सबसे प्रथम होता है. हमारा भारत देश नारी प्रधान देश है. आदिकाल से देखा जावे तो नारी को देवी स्वरूप में पूजा जाता है. पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण, पहले सीता, फिर राम, पहले राधे, फिर कृष्ण. नारी प्रधानता वाला ये हमारा भारत देश आज जो यहाँ नारियां उपस्थित है, हमारी बहने यहाँ पर आज जो सम्मेलन में आई हुई है, वह अपने घर परिवार को कैसे इम्पावर करे ये जिम्मेवारी समझने के लिए आई है. एक छोटी सी मॉरल स्टोरी. दो पड़ोसी थे. एक परिवार बहुत ही शांति से रहता था, एक परिवार में हमेशा झगड़े ही रहते थे. जिस परिवार में बहुत झगड़े हुआ करते थे, उसने बहन ने कहा अपने पति को, जरा थोड़ा सस्पेंस तो जानकर आओ कि ये परिवार शांत कैसे रहता है। इस परिवार से तो कभी भी शोरगुल अशांति की आवाज ही नहीं आती, और हमारे घर में तो सारा दिन यहाँ पर महाभारत ही रहता है। उस परिवार का जो पति था वह शांत परिवार के पास गया और एक स्थान पे छिपके विंडो पे खड़ा हो गया। उस परिवार की महिला घर की सफाई कर रही थी, पोछा लगा रही थी। उसको किसी ने आवाज दिया तो वह पोछे की बाल्टी वहीं छोड़ के जिस जहां से आवाज आए वो वहां चली गई। उसका पति आया, उसके पति का ध्यान नहीं था कि यहाँ पर पानी की बाल्टी पड़ी है। वह अपने ही व्यस्त में वहां से गुजरा तो बाल्टी की पानी पूरी नीचे गिर गई और वह भी पानी से फिसलते नीचे गिरा। यह आवाज सुनते ही महिला जिस आवाज से काम पे गई थी वो आई और उसने अपने पति को कहा, सॉरी मैंने पोछा लगाते लगाते मैं आधे में चली गई, दूसरे काम से आवाज दिया, मुझे पोछे की बाल्टी साइड करके रखते जानी चाहिए थी, मैं दूसरी बार जरूर ध्यान दूंगी। उसके पति ने कहा, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं दूसरी बार जब भी जाऊंगा तो पहले देखते हुए चलूंगा कि रास्ते में कहीं कुछ पड़ा तो नहीं है। जब छिपकर देखने वाला उस परिवार का पति यह दृश्य देख जब वापस आया तो उसकी पत्नी ने कहा, आपको समझ में आया उस परिवार में शांति क्यों है? कहा कि मुझे राज समझ में आया कि उस परिवार में होने वाली छोटी मोटी गलतियों के लिए हर एक स्वयं को जिम्मेवार समझता है और उन गलतियों को सुधारने के लिए, स्वर को बदलने के लिए वो तैयार है, और हम इस परिवार में छोटी मोटी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी बनाते हैं। दूसरों को दोष देना ही घर में महाभारत चालू करना है, और हर बात में स्वर को परिवर्तन करना, स्वर की गलती को सुधारना, यही वास्तव में गीता ज्ञान है, यही वास्तव में स्वयं के जीवन को परिवर्तन करने की सबसे बड़ी औषधि है। ऐसा सुंदर वक्तव्य और ऐसे सुंदर विचारों को और निरंतर कंटिन्यू करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आदरणीय बहन डॉक्टर सविता बहन। आप 1974 में ब्रह्माकुमारी संस्था से जुड़े और 1989 में आप संपूर्ण समर्पित रूप से इस मानव जाति की सेवा के लिए आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपने मेडिकल की पढ़ाई पूरी किया है और आप इस राजोटा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के इस महिला प्रभाग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपने नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर कई कार्यक्रमों का संचालन किया है। आदरणीय सविता बहन जी, हमारी सविता बहन के द्वारा इस महिला प्रभाग की जो भी एक्टिविटीज है, ये महिला प्रभाग किस प्रकार से अपनी महिलाओं को जागृति देने की सेवाएं कर रहा है, पूरे भारतवर्ष में इन सेवाओं की रूपरेखा क्या है, विस्तार में हमारी सविता बहन जानकारी दें।
ओम शांति, ओम शांति। जगत नियंता, सर्व के सुख शांति के दाता, परमपिता परमात्मा शिव की प्रिय संतान, मंचासीन आदरणीय डॉक्टर नमला दीदी जी, आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, बहन नीतापुरी जी, बहन आरती जोशी जी, बहन सुनीता वाडेकर जी, पुष्पा बहन, एवं सभा में उपस्थित संपूर्ण भारतवर्ष से पधारी हुई आप सभी मातृशक्ति बहने एवं भाई, आज आप सभी के स्वागत का दिन है, तो आप सभी के स्वागत में मैं कहूंगी, गगन की शान तारे हैं, चमन की शान बहारे हैं, और इस हार्मनी हॉल की शान में चार चांद लग गए हैं, जो आप सभी शक्तियां और भाई यहां पधारे हैं। आपने सुना यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विभिन्न व्यवसायों की सेवा के लिए, विभिन्न वर्गों की सेवा के लिए अनेक प्रभाग बने हुए हैं, और उन्हीं में से एक प्रभाग महिला प्रभाग है, जो महिलाओं के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए तत्पर है। इसकी शुरुआत सन 1986 में हुई, जब यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था। आज हम देखते हैं कि अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थान भी महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास कर रहे हैं, और काफी हद तक उससे महिलाओं की स्थिति में वर्तमान में सुधार भी हुआ है। उन्हें कई सामाजिक अधिकार मिले हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, राजनीतिक रूप से भी उनकी शक्ति बढ़ी है, और आर्थिक रूप से भी वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है, आज भी समाज में उनके प्रति बढ़ रहे अपराध और हिंसा की घटनाओं के आंकड़े प्रतिवर्ष बढ़ते ही जाते हैं। तो आवश्यकता है महिलाओं के प्रति जो मानसिकता है समाज की, उसे परिवर्तन करने की, क्योंकि महिलाओं के प्रति संपूर्ण मानसिकता में परिवर्तन अभी तक नहीं आया है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके नैतिक सशक्तिकरण के लिए महिला प्रभाग के द्वारा प्रतिवर्ष अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उसमें विशेष मुख्यालय में जो सम्मेलन आयोजित किया गया है, ऐसे सम्मेलन वर्ष में एक या दो आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष दो सम्मेलन हैं, अभी वर्तमान जो हमारा सम्मेलन है, और सितंबर में भी, 8 से 12 सितंबर में भी एक शांतिवन जो डाउनहिल अपना कैंपस है, वहाँ पर लगभग 5,000 की संख्या में पूरे भारतवर्ष से महिलाएं उपस्थित होने वाली हैं। तो एक सम्मेलन का आयोजन सितंबर में भी किया गया है, और जैसा कि आदरणीय चक्रधारी दीदी जी ने बताया कि लगभग ऐसे 40 सम्मेलन अभी तक यहाँ मुख्यालय में आयोजित किए जा चुके हैं, और इसके अलावा पूरे भारतवर्ष के अन्य शहरों में भी सम्मेलन एवं सेमिनार संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं, जिसमें विशेषकर विशिष्ट महिलाओं को या विभिन्न पदों पर कार्यरत महिलाओं को आमंत्रित किया जाता है, और जो यहाँ से प्रेरणा लेते हैं वो फिर अपने संपर्क में आने वाले अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करते हैं। महिला प्रभाग के द्वारा एक सुखी पारिवारिक जीवन के लिए मूल्य, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। आप जो वर्तमान अभी सम्मेलन हो रहा है वो भी पारिवारिक सशक्तिकरण पर भी हो रहा है। तो हम समझते हैं, जानते हैं कि आज के परिवार उतने सुखी परिवार नहीं रहे, अनेक समस्याएं हमारे परिवारों में आ चुकी हैं, जैसे एक दो के प्रति जो निस्वार्थ स्नेह होना चाहिए, एक दो के प्रति जो सम्मान और आपसी समझ होनी चाहिए, वो आज परिवारों में देखने को नहीं मिलता है, उसकी जगह स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। और जो नई पीढ़ी है हमारी, उसके नैतिक मूल्यों में तो बहुत तेजी से गिरावट हुई है, तो बच्चों की भी अनेक समस्याएं हैं वर्तमान समय पर, और उसके साथ साथ जो आज सोशल मीडिया है, यानी जो मीडिया की प्रवेशता हुई है हमारे जीवन में और परिवारों में, उसने भी आपसी दूरियों को बहुत बढ़ा दिया है। हम गैजेट्स के ज्यादा समीप हैं, बचाए एक दो के समीप होने के। तो जो भी पारिवारिक समस्याएं हैं, उसमें जिन मूल्यों की कमी है, आपस में जो सहन करने की शक्ति, नम्रता, मधुरता या समायोजन की शक्ति हमारे में होनी चाहिए, जो स्वच्छता और व्यवस्था परिवार में होनी चाहिए, इन सब के विकास के लिए ये इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम समय प्रति समय आयोजित किए जाते हैं। 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है, इस दिवस पर भी महिला प्रभाग के द्वारा जो भी ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र हैं पूरे भारत वर्ष में, वो सभी कोई ना कोई थीम को लेकर के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और ऐसे कार्यक्रम जिनके द्वारा उनके अंदर जागृति लाई जा सके, उनका सशक्तिकरण किया जा सके, महिला प्रभाग के द्वारा एक नारी शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें सभी सेवाएं जो संपूर्ण भारतवर्ष में की जाती हैं, उनके समाचार और साथ साथ में उनसे संबंधित, उनके सर्वांगीण विकास कैसे हो उसे संबंधित लेख भी उसमें प्रकाशित किए जाते हैं। ये त्रिमासिक पत्रिका है और जो भी आपको फाइल फोल्डर मिला है आज, उसमें नारी शक्ति पत्रिका आपको दी गई है। महिला प्रभाग के द्वारा एक 13 चित्रों की महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण चित्र प्रदर्शनी बनाई हुई है। ये चित्र प्रदर्शनी सभी महिलाओं के समस्याएं और उनके समाधान को दर्शाती है और पूरे गांव और कस्बों में चित्रों से सुगमता से महिलाओं के विषय में कैसे उनका विकास हो, कैसे उनका सशक्तिकरण हो, स्पष्ट किया जा सके, उसके लिए ये चित्र प्रदर्शनी बनाई गई है। और इन चित्रों का जो स्पष्टीकरण है उसके लिए भी एक पुस्तक बनी हुई है, महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण, जो अपने यहाँ साहित्य विभाग में उपलब्ध भी है। महिला प्रभाग के द्वारा समय प्रति समय जैसी आवश्यकता होती है वैसे अभियान भी ऑल इंडिया लेवल पर निकाले गए हैं। 2001 में जब भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था, उस समय महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण अभियान अखिल भारतीय स्तर पर निकाला गया, जो बहुत ही ग्रैंड लेवल पर था। भारत के 9 बड़े-बड़े शहरों से या कहेंगे 9 राज्यों से उसका शुभारंभ हुआ। 9 सितंबर को वो शुरू किया गया और भारत के 14 राज्यों से, विभिन्न शहरों, कस्बों और गांवों से गुजरता हुआ, यानी अनेक प्रकार के कार्यक्रम महिलाओं के लिए किए जाते रहे, जिसमें लाखों महिलाओं ने लाभ लिया और फिर उसका दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में भव्य समापन समारोह किया गया। और उसमें भारत सरकार द्वारा घोषित 5 विषय लिए गए थे, नैतिकता, शांति, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। तो नैतिकता की स्थापना में महिलाओं का योगदान और सुख शांति की स्थापना में, समाज में सुख शांति की स्थापना में महिलाओं का योगदान क्या हो, कैसे हो, इसकी जानकारी दी गई। उनको स्वास्थ्य के नियमों की जानकारी दी गई कि कैसे जीवन में स्वस्थ रहा जा सकता है, क्योंकि देखने में आता है कि महिलाएं अपने परिवार के स्वास्थ्य की संभाल तो करती हैं, लेकिन कई बार स्वयं के स्वास्थ्य की परवाह करना भूल जाती हैं। और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देकर उनकी छिपी हुई शक्तियों का उनको बोध कराना, ये भी इस अभियान का लक्ष्य रहा। इसके साथ साथ महिलाओं के आध्यात्मिक सशक्तिकरण का भी प्रयास किया गया, क्योंकि मूल्यों का विकास आध्यात्मिकता के द्वारा ही होता है। वर्ष 2013-14 में जब भारत में निर्भया कांड हुआ, उसके पश्चात कई संस्थाओं की ओर से हमें ये कहा गया कि आप इसके लिए कोई अभियान चलाइए, तो फिर नारी सुरक्षा अभियान जो है वो पूरे भारतवर्ष में चलाया गया। लगभग 2 वर्ष तक ये अभियान चला और वो भी अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 20 रैलियां महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जिसका उद्देश्य था कि परिवार, समाज और देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागृति लाना, स्वयं के सशक्तिकरण के लिए उनको सशक्त बनाना, स्वयं की सुरक्षा के लिए उनको सशक्त बनाना और सार्वजनिक स्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित करने के लिए जन जन को प्रेरित करना, और उसके साथ साथ जो मन की भावनाओं को उत्तेजित करने वाला मीडिया है, जो आज हम देखते हैं अश्लील विज्ञापन और अश्लील साहित्य, इस तरह के जो मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है या पढ़ा जाता है, इन सब को प्रतिबंधित करने के लिए भी जागृत करना, और इसके लिए पूरे भारतवर्ष में वो रैलियां निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ किया 2014 में, तब उसी अभियान के सपोर्ट के लिए महिला प्रभाग के द्वारा बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान वो पूरे भारतवर्ष में निकाला गया, और ये अभियान भी 2 वर्ष तक चलता रहा। भारतवर्ष के सभी राज्यों में बहुत व्यापक रूप से बेटी बचाओ अभियान कार्यरत रहा, और इसका भी उद्देश्य था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में बेटे को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है और ऐसा माना जाता है कि बेटा ही वंश चलाएगा, तो उसके कारण कन्या भ्रूण हत्या होती है, तो उसके विषय में जागृति लाना आवश्यक था, क्योंकि जो बेटियों की संख्या है उसका अनुपात वो तीव्र गति से घटता जा रहा था। प्रति 1000 बेटों पर करीब 930 या कहीं कहीं तो 800 तक भी, किन्हीं राज्यों में खासकर हरियाणा, राजस्थान, यूपी, ऐसे राज्यों में तो संख्या बहुत ही कम रही, और उस समय इस अभियान की विशेष आवश्यकता थी, और अभी ये अभियान भारत में होने के बाद अब काफी अंतर देखने में आता है कि हाँ अब जो है वो अनुपात वो अभी तक भी पूरी तरह से समान तो नहीं हुआ है, लेकिन वो अंतर जो है वो काफी अब घट चुका है। उसके पश्चात हमारे राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति, उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद जी थे, वो यहाँ इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में पधारे थे और उन्होंने विशेष महिलाओं में जागृति लाने के लिए रुचि दिखाई थी, तो उनके हाथों से महिला सशक्तिकरण द्वारा समाज परिवर्तन इस अभियान का शुभारंभ किया गया, जो लगभग 1 वर्ष तक चला, और उसके बाद हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक अभियान इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया, जो था वुमेन द फ्लैग बीरर ऑफ न्यू इंडिया, नए भारत की ध्वजवाहक महिलाएं, ये अभियान चलाया गया सन 2019 में, और अभी इस वर्ष ही जनवरी में 2023 में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पारिवारिक सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ किया, और इसी अभियान के अंतर्गत 8 मार्च को और उसके अलावा भी अनेक शहरों में कार्यक्रम किए गए। 8 मार्च को जो विषय लिया गया खुशहाल महिला खुशहाल परिवार, वो इसी अभियान के अंतर्गत ही लिया गया, और जो आज का सम्मेलन भी शुभारंभ हो रहा है वो भी इसी विषय पर है। पूरे वर्ष ये पारिवारिक सशक्तिकरण का अभियान जारी है, तो इस तरह से महिला प्रभाग के द्वारा समय प्रति समय जैसी आवश्यकता है, समय की पुकार को देखते हुए या समय की डिमांड को देखते हुए महिलाओं के प्रति वो सेवाएं की जाती रही हैं। मैं कहूंगी कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ही एकमात्र ऐसी आध्यात्मिक संस्था है जिसका संचालन, प्रशासन और व्यवस्थापन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में जो हमारी मुख्य प्रशासिका हैं, आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी हैं, सह मुख्य प्रशासिका हैं ब्रह्मा कुमारी मोहिनी बहन जी, और उनके साथ साथ ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन जी, और जॉइंट चीफ जो हैं हमारे उनमें से एक आदरणीय निर्मला दीदी जी हमारे सम्मुख हैं, और उसके अलावा भी आदरणीय संतोष दीदी, आदरणीय मुनि दीदी, वो भी हमारे जॉइंट चीफ हैं, और जितने भी सेवा केंद्र हैं विशेषकर भारतवर्ष में अधिकतर सेवा केंद्रों का 99% सेवा केंद्रों का संचालन बहनों के द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ साथ जो प्रवृत्ति में रहने वाले लाखों परिवार हैं जो अपना व्यवसायिक जीवन भी जीते हैं लेकिन अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो बहनों के निर्देश अनुसार ही कार्य करते हैं। तो यद्यपि यहाँ पर हम कहेंगे कि अधिक संख्या बहनों की है, माताओं की है, लेकिन फिर भी आपस में माताओं और भाइयों में, बहनों और भाइयों में हम कहेंगे कोई भी कटुता, ईर्ष्या या द्वेष की भावना नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हमारा परिवर्तन होता है और दैहिक दृष्टि से हमारी आत्मिक दृष्टि हो जाती है, जो हम आदरणीय चक्रधारी दीदी जी के द्वारा भी सुन रहे थे। तो ये परिवर्तन होते ही आपस में एक दो के प्रति स्नेह, सम्मान और सहयोग की भावना रहती है। वो अधिकार भावना या भेदभाव पूर्ण व्यवहार या अत्याचार, ये सब समाप्त हो जाता है। तो आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम समाज की मानसिकता महिलाओं के प्रति परिवर्तन करें, और यही परिवर्तन करने का कार्य या इस दृष्टिकोण को ही परिवर्तन करने का कार्य ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रहा है। और वो स्थान परमात्मा हमारी नारी शक्ति को दिला रहे हैं जो आदि भारत में उनका था, जो गायन है, यत्र नारियस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ ही देवता निवास करते हैं, अर्थात वो पुनः अपने दैवी पद पर आसीन हो, यानी उनके अंदर उन दिव्य गुणों का और शक्तियों का पुनः विकास हो, और वो अपनी उस गौरवशाली स्थिति को पुनः प्राप्त करें कि वो केवल घर को ही स्वर्ग ना बनाए लेकिन इस पूरे विश्व को ही स्वर्ग बनाने में अपना योगदान दें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन जो विद्यालय के द्वारा सेवाएं की जा रही हैं उसकी एक झलक आपको स्लाइड शो के द्वारा, 3 मिनट का वो स्लाइड शो है, वो आप देखेंगे, वो दिखाई जाएगी। ये माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा जो एम्पावरिंग द फैमिली कैंपेन का लॉन्चिंग हुआ उसके झलकियां, और ये विभिन्न केंद्रों पर वही जो कार्यक्रम चल रहा है, दिल्ली में चला, नागपुर में चला, जयपुर में, मुंबई में, एम्पावरिंग द फैमिली के ऊपर जो कार्यक्रम चले, सायन में, बुरहानपुर में, और ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कैंपेन का लॉन्चिंग हुआ उसके कार्यक्रम मुंबई, दिल्ली, फरीदाबाद, राजकोट में, जोधपुर में, भरतपुर में, और ये माननीय राष्ट्रपति कोविंद जी के द्वारा जो अभियान लॉन्च हुआ, ये बेटी बचाओ सशक्त बनाओ कैंपेन 2016 से 18 तक जो चला, उसमें कटक, दिल्ली, कोलकाता के कार्यक्रमों की झलकियां हैं, पूरी राजस्थान आबू रोड। रांची, लखनऊ, श्रीगंगानगर, नवरंगपुर, ये नारी सुरक्षा अभियान कैंपेन 2014-15 में चला। दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद, पुणे, पोरबंदर, जबलपुर, इंदौर, और महिला सशक्तिकरण के जो कार्यक्रम विभिन्न सेवा केंद्रों के द्वारा समय प्रति समय किए जाते रहे, कच्छ भुज में, ये विदेश में सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में कार्यक्रम हुआ था, गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, गोवा, साउथ में गुलबर्गा में, जामनगर, गुवाहाटी, असम में, आनंद, रायपुर, आगरा, ये गुजरात के कार्यक्रम। जो सम्मेलन किए गए, आबू सम्मेलन की कुछ हल्कियां, और डॉटर्स डे पर भी बेटियों के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए, उसकी हल्कियां हैं। उसका विषय लिया गया था सुसंस्कारों की धरोहर, भारत की बेटियां। ओम शांति। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आदरणीय सविता बहन जी, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक और बहुत ही नटशील में बेहद महिला प्रभात से होने वाली सेवाओं की झलकियां सुनाई भी, और वो सुंदर दृश्य भी दिखाई। ये 3 दिन के सेमिनार में हमारे सविता बहन हमारे साथ ही रहेंगे। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सवेरे का जो मेडिटेशन का सेशन है, एक दिन हमारे सविता बहन आप सभी को उसका भी लाभ देंगे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर आसीन हमारी बहन श्रीमती सुनीता वाडेकर। आप महाराष्ट्र पुण्य नगरी पुणे से पधारे हैं और आप वहाँ पर डिप्यूटी मेयर कारपोरेटर हैं। आप अपनी शुभकामनाएं आज के सेमिनार में कुछ चंद शब्दों के द्वारा देंगे। बहन सुनीता वाडेकर।
ओम शांति। आज पारिवारिक सशक्तिकरण राष्ट्रीय सम्मेलन महिलाओं के द्वारे आज यहाँ पर आयोजित किया है। इस प्रोग्राम में उपस्थित मंच पर निर्मला दीदी संचालिका है, चक्रधारी दीदी सविता दीदी, नीतापुरी, आरती जोशी, ये सब ये प्रोग्राम में उपस्थित मंच पर अभी है। उनका पूरा हमने अभी सुना है, बहुत अच्छा ज्ञान हमको सबने दिया है। सही मायने में आज मैं इधर आई हूँ, मैं पुणे से हूँ, पुना बोपुड़ी। हम कई सालों से बोपुड़ी में बहुत काम करते हैं। एक मैं डिप्टी मेयर हूँ उधर की। मैं पहली गृहिणी थी। गृहिणी के बाद सोशल में मैं काम करना बहुत इंटरेस्ट हुआ। बाद में वो करते करते मेरे पति पॉलिटिक्स में है, उनके पीछे पीछे मैं काम करते अभी मैं डिप्टी मेयर हूँ। वो काम करते मैं अभी हमारे पुणे में मेरे एरिया में मेरा वार्ड 1,00,000 लोगों का है, बड़ा एरिया है। और मेरे एरिया में कम से कम ओम शांति का सेंटर 6 तो सेंटर है। ये मेरी खुश नसीबी है। सभी सेंटरों में मैं खुद जाती हूँ और सब दीदियाँ मेरे को आदर देके मेरे को पूरे बुलाते हैं। और पुना में जो बोपड़ी में जो सेंटर है वो सेंटर में सभी फेस्टिवल बनाते हैं सभी दीदियाँ। तो मैं सभी फेस्टिवलों को आदर से हमको बुलाते हैं उधर। उधर गणपति का फेस्टिवल बनाते हैं, शिवजी का फेस्टिवल बनाते हैं और पूर्णिमा का बनाता है। अभी हर एक 12 महीने में प्रोग्राम रहते हैं फेस्टिवल भारत का। वो पूरा फेस्टिवल दहीहंडी रहेगा, ऐसा अनेक प्रोग्राम रहते हैं। इनविटेशन देके हमको सभी बुलाते हैं। 4 महीने पहले हमारे एरिया में शिवानी दीदी आई थी। मेरा इतना बड़ा नसीब देखो, मैं शिवानी दीदी मेरे हमारे सेंटर में आए बोपुड़ी में। तो हमारा नसीब था उनके साथ में बैठ के, हम उस मंच पर बैठ के हमको साथ में बैठ के भाषण देने का आदर हमको मिला। हमारा बहुत बड़ा नसीब है उनके साथ हम मिलके आज उनके वजह से उनके विचारों को लेके आज हम बोपुड़ी में सब साथ लेके सम्मान पूर्वक आज काम करते हैं। उसी हिसाब से आज सुनीता दीदी 5 साल से मेरे साथ है बोपुड़ी के कोटकर लेन में। सुनीता दीदी उनका सेंटर है और वो हमेशा हमको याद करते हैं। बहुत दिनों से बोल रहे थे कि हम माउंट आबू जाएंगे, जरूर जाएंगे दीदी, जरूर जाएंगे जाएंगे बोले। मैं हर प्रोग्राम में हमको वो इन्विटेशन करते हैं, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था। हम पॉलिटिशियन लोग हैं, गोर गरीबों को काम करते हैं, बहुत सारे काम रहते, छोटे मोटे रहे या घरगुती रहे, बड़े बड़े काम रहे, वो सभी काम हम करते हैं। लेकिन उसमें से ही एक दो घंटा रहे या आधा घंटा रहे, सुनीता दीदी हमेशा बोलती है तुम्हारे शांति के लिए 2 मिनट आके हमारे इस स्थान पर बैठ जाओ, देखो तुम्हारा पूरा दिमाग हल्का हो जाएगा। ऐसा दीदी ने हमको बोल के इतना ज्ञान दिया, हमको बहुत प्रसन्न हुआ। अभी मैं उधर मेरा पति वो पुणे जिला कमेटी के अध्यक्ष है, उनके हिसाब से उनका आशीर्वाद है और बाबा का आशीर्वाद है। आज मेरे को इस मंच पर आने का उन्हीं का धन्यवाद मानती हूँ मैं कि माउंट आबू लाए और मेरे को सबका, चक्रवर्ती दीदी का, निर्मला दीदी का, वैसा ही सविता दीदी का, सभी का मैंने आज इधर ज्ञान सुना। बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली। आज मैं इधर आई, 2 दिन हुआ, मैं दीदी से सब इधर का पूछताछ करती गई तो दीदी ने बोला इधर आज हम घूम के भी आए, पांडव भवन गए थे, उधर पांडव भवन गए तो इतना मन को शांति लगा, तो बहुत मन प्रसन्न हुआ। उधर से हिलने को मन नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, फिर भी हम उधर 10 मिनट बैठे और उधर से आए। इधर आए तो इधर का नेचर, इधर का खाना, इधर का रहन सहन, इधर का तुम्हारा सबका देख के बहुत मन भर गया। इधर का सभी स्वच्छता का अभी मैं ज़्यादा हिंदी बोलती नहीं, थोड़ा थोड़ा यूज तो मराठी हो जाएगा, आप समझ सकते हैं मेरा। तो इधर का इतना क्लीनिनेस है, तो बहुत क्लीनिनेस है इधर का। आपका खुद का चलने का, बोलने का ढंग, इतना पूरा मन बहलाता है ना कि इधर भगवान साक्षात उतरा है ऐसा, इधर पावन धरती है इतना मन भर के आया, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। तो आज ये इधर ये जो सेंटर बना है, जो सेंटर बना है सब सेवाधारी लोग हैं जो ये सेंटर बनाते हैं, जो कुछ थोड़ा काम रहेगा किसी को बाहर आने देते नहीं, सभी सेवा देने लोग ही ये सब बनाते हैं। ये भी सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो कुछ मांगते नहीं दिल से कुछ भी नहीं, क्यों सेवा करते हैं ये बड़ी बात है। लेकिन आज किधर भी हम काम करने जा, हम मैं पॉलिटिशियन में हूँ लेकिन हम जब भी पैसा देते तभी हमको मत मिलता है, पैसा नहीं देंगे तो हमको मत नहीं मिलता। लेकिन इधर ऐसा नहीं, मन इतना फ्रेश रहता है, इधर पैसा भी लगता नहीं, इधर कुछ दे खुद इस सेंटर से हमको बहुत सारा मिला जो हम जिंदगी में कभी पैदा होके भी मरते दम तक मिला नहीं सकते, उतना इधर हमको मिला। ये सब देख के हमको बहुत मन भर के आया। आज खरे सबसे सही बात बोली तो आज महिला दिन के निमित्त आज ये प्रोग्राम तुमने रखा, आज रख के इस मंच पर हमको बुलाया, हमारा बहुत आदर किया, हमको बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आप सभी से ये मैत्री एक बहुत बड़ी रहती है, इसीलिए छोटे रहे या बड़े रहे या कोई हमसे ही पुराने आदमी रहे, सभी से हम हंसते रहे, उनका दुख समझ के वो दुखी है करके हम दुखी उसके साथ नहीं होना मांगता, हम सब उसका दुख में हम शामिल होके उसका दुख कैसा दूर करे ये हम सब सोच के हम हंसते रहे और सभी के साथ दुख बांटते रहे, यही हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म है। इतना बोलती मैं, ज्यादा बोल नहीं सकती मैं, मराठी भाषण आता है मेरे को, ज्यादा बोले तो मैं हिंदी ज्यादा बात कर नहीं सकती। आज इधर आके मैं शुद्ध हो गई ऐसा मेरे को लगता है और मैं हो गई, और आइंदा से मेरे परिवार को मैं मेरे साथ में आज पुणे से हम 17 लोग आए हैं दीदी, 17 लोग सभी हमारे, मेरी सहेली भी है हिमाली कांबड़े, वो भी कॉर्पोरेटर है, उसको भी मैंने साथ लिया। वैसे दीदी ने हमारे 17 लोगों को साथ में लेके आके इधर हमको सबको पावन किया, वो दीदी का मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कमी छे। और मेरे साथ में एक नितिन भाई भी है, निखिल भाई भी है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ करती हूँ, सभी का मैं इस मंच पर मेरे को बुलाए सम्मान दिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात बताती हूँ कि जब भी चक्रवर्ती दीदी पुणे आई है, मैं मेरे तरफ से मेरे एरिया में बहुत बड़ा प्रोग्राम लूंगी, आप आए तो बहुत अच्छा लगेगा, जब भी आएंगे मेरे को पहले ही इनविटेशन दे दीजिए, मैं बड़ा प्रोग्राम लेके आपका सम्मान करना मेरा मन चाहता है तो जरूर करूंगी। इतना बोलती हूँ, आपने इधर सम्मान दिया उसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सुनीता बहन, आप पुण्य नगरी से अपने पुण्य से यहाँ पर पहुंचे हो, आपका बहुत बहुत आभार है। हमने इस सेमिनार की शुरुआत परमात्मा की विधि से किया, परमात्मा की स्मृति में रहकर विधि पूर्वक किया। अब इस कार्यक्रम की, आज के इस रिसेप्शन सेशन की संपन्नता हम हमारी आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी के आशीर्वचनों से करेंगे। हमारी आदरणीय निर्मला दीदी जी जो पिछले 60 वर्षों से संपूर्ण रीति से अपनी सेवाओं को, अपने जीवन को इस सेवा में समर्पित किया हुआ है, दीदी जी आप ब्रह्मा कुमारी इसकी संयुक्त प्रमुख हैं, आप जिस एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड इस ज्ञान सरोवर में हम सभी रहे परे हैं, आप 2009 से इस ज्ञान सरोवर की निर्देशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साथ में आप आईटी विंग और ट्रांसपोर्ट विंग जो राजोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत आप उनकी अध्यक्ष हैं। यदि आपके द्वारा ही बॉम्बे में पहला सेवा केंद्र 1966 में कांदेवली में खोला रहा, ऐसा कहें कि बॉम्बे मायावी नगरी में इस ईश्वरीय ज्ञान का बीज हमारे दीदी के एक पावन संकल्प से एक सेवा केंद्र खुला। अब मैं दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि दीदी अपने आशीर्वचनों के द्वारा हमारी आई हुई आज की नारी शक्ति जो इस इम्पावरिंग द फैमिली अपने परिवार को भी वह सशक्त करे, ऐसे आशीर्वचनों की दीदी जी बरसात करेंगे। जैसे बरसात चारों तरफ हरियाली लाती है ना, ऐसे दीदी के आशीर्वचन भी आप सभी के जीवन में सुख शांति के हरियाली लावे, ऐसी हमारी उम्मीद है आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। मंच पर उपस्थित सर्व वक्तागण और सभा में उपस्थित महिलाएं और थोड़े भाई भी हैं, आज हम देखेंगे के फैमिली का सशक्तिकरण कैसे करें। तो उसके लिए पहले तो खुद का सशक्तिकरण करना है, और आप यहाँ आए हो स्पेशली जो पहली बार आए हैं वो सवेरे का जो मेडिटेशन सेशन है उसमें भाग लेंगे तो 3-4 दिन में आपको ये युक्तियाँ मिलेंगी कि अपने को सशक्तिकरण कैसे करें। महिला का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि माताएं परिवार की पालना करती है। माता को पहला गुरु कहा जाता है, और भारत में देवियों की पूजा ज्यादा होती है देवताओं के बजाय। कारण के इस समय माताएं सारे विश्व का सशक्तिकरण करती है, और परमात्मा ने भी ये ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। ब्रह्मा बाबा भल संस्था के स्थापक रहे, परंतु उन्होंने संस्था की हेड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मातेश्वरी सरस्वती को बनाया, और आज भी भारत में वंदे मातरम का गायन है। तो माताओं का गायन होता है, माताएं जॉब भी करती है, कई माताएं बच्चों की भी पालना वही करती है, घर की संभाल भी करती है, और कई माताएं ये सेवा में भी मदद करती है। तो माताओं के ऊपर डबल ट्रिपल जिम्मेवारी है। पुरुष लोग नौकरी करके आते हैं, कमाई करके आते हैं, और उन्हों को थाली हाथ में चाहिए, गरम गरम चपाती तवे से सीधा थाली में चाहिए। तो न्यूजीलैंड की माताएं बहुत कंप्लेन करती थी कि हम हैं वो पेंटिंग भी करते हैं, हम हैं बल्ब भी चेंज करते हैं, भाइयों का काम हम भी करते हैं, पर भाई हमारा काम नहीं करते। पर कई माताएं होशियार होती है, वो क्या करती है कि भाइयों को घर की आधी जिम्मेवारी दे देती है। लंदन में एक माता है, उसने क्या किया, दो बच्चे थे, पति पत्नी दोनों ज्ञान में थे, बच्चे छोटे थे, 2-3 साल का 5 साल का, तो माता ने कहा एक दिन आप क्लास में जाओ, एक दिन मैं जाऊंगी। तो छोटे बच्चे को प्रेम में लेकर ट्रेन में सेंटर पर जाते थे और उन्होंने घर में गीता पाठशाला खोली, तो अभी भी वो गीता पाठशाला चलाती है और सबके पालना करती है। तो क्या है कि माताएं कोई कोई तो अच्छी स्ट्रांग होती है, अपना हक जाने नहीं देती, कोई है वो चला लेती है। तो आप सभी इतनी माताएं संसार को स्वर्ग बनाने में मदद करेंगे, जितना आप यहाँ से सीख कर जाएंगी, अपने जीवन को परिवर्तन करेंगे, तो हम देखेंगे सारा संसार बदल जाएगा। यही ब्रह्मा कुमारियों का लक्ष्य है कि हम देवता बने, नरसो नारायण, नारी सो लक्ष्मी। तो उम्मीद है आप यहाँ पूरा लाभ लेंगे और फिर परिवार को सशक्त बनाएंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय दीदी जी। देखिए समय पर हम सबसे पहले दीदी जी आए थे और पिछले 2 घंटे 2.25 घंटे से हमारे साथ नहीं मंच पर बैठकर और एक मूर्ति की तरह अपनी पावरफुल दृष्टि के द्वारा हम सभी को सकारात्मक ऊर्जा दिया और अंत में ब्लेसिंग्स वर्ड्स भी सुनाए दीदी ने। हम बहुत बहुत तहे दिल से दीदी जी का धन्यवाद करते हैं जी। हाँ जी, कोई भी जाएंगे नहीं, आज ही सभी को, आप सभी ईश्वर पिता के घर में आई है, विद्यालय में आई है, सम्मेलन में आई है, आप सभी को आज ही ईश्वरीय सौगात मिलेगी। तो सभी बैठे रहे, मेहमानों को पहले, जो हमारे मंच पर सुशोभित हमारे मेहमान है उन्हें शॉल और ईश्वरीय प्रसाद गिफ्ट देकर हमारी आदरणीय दीदियां उनका सम्मान करेगी। नीतापुरी बहन जी, आरती जोशी जी और सुनीता बहन, इन मेहमानों का आदरणीय दीदी के द्वारा इन्हें शॉल आपका सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप व्यस्त होते हुए भी अप अपना अमूल्य समय निकाला और आज के इस सम्मेलन में आपने अपनी शुभकामनाएं दी। आदरणीय देवी जी आरती जोशी बहन को शॉल पहन के सम्मान कर रही हैं और सविता दीदी जी ईश्वरीय प्रसाद दे रही हैं। हमारी बहन सुनीता वाडेकर जी को दीदी जी के द्वारा शॉल पहनाई जा रही है। और सविता दीदी जी उन्हें ईश्वरीय प्रसाद देंगे और आप सभी को भी ईश्वरीय सौगात मिलेगी। और जो साथ में बीते सेवाधारी बीते बहनें आई हुई हैं उन्हें भी आज ही सौगात मिलेगी।